रेडियो वेरितास एशिया के हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को मेरा यानी कि प्रियंका डामोर की ओर से नमस्कार। प्यारे साथियों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एवं जिंदगी का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद एवं आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचय करवाती हूँ। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे पवित्र सुसमाचार, भक्ति गीत एवं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं आज का पवित्र सुसमाचार।
उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रेयस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थोलोमी को, मत्ती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्कारियोती को जो विश्वासघाती निकला। ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तिरुस तथा सिदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अबदूत ग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी।
साथियों, अभी आपने सुना आज का पवित्र सुसमाचार। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। तो साथियों, कार्यक्रम में अब समय हो चुका है मधुर गीत का। तो आइए साथियों, अब सुनते हैं एक मधुर गीत। साथियों, इस मधुर गीत के बाद आप सुन सकेंगे आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। तो साथियों, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।
Oh, रोशनी खो गई, एक दिया तो जले, रोशनी खो गई, एक दिया तो जले, मंजिले दूर है, कम करो फासले, मंजिले दूर है, कम करो फासले, हे प्रभु हम तेरे हो गए तू थाम ले, हे प्रभु हम तेरे हो गए जिंदगी हर घड़ी बस तेरा नाम ले, जिंदगी हर घड़ी बस तेरा नाम ले, हे प्रभु हम तेरे
साथियों। अभी आपने सुना यह मधुर गीत। साथियों आप सभी का इस कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। साथियों इस समय आप रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। साथियों अब समय हो चला है आज के हमारे विशेष कार्यक्रम का, तो साथियों आइए सुनते हैं आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों इस कार्यक्रम के बाद आप सुन सकेंगे एक और मधुर गीत, तो साथियों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहें और सुनिए आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम युवा और विकास।
ससुराल में युवा बहू का सामंजस्य, लेखक माइकल हॉजिस और बातचीत में भाग ले रही हैं अपर्णा सिंह और माइकल हॉजिस।
युवा श्रोता साथियों को अपर्णा सिंह और
माइकल का
नमस्कार। तो माइकल जी आज हम अपने श्रोताओं के लिए बातचीत के माध्यम से कौन सा विषय प्रस्तुत करने वाले हैं ये उनको बताते चले हम।
बिल्कुल अपर्णा जी, ये उन्हें बताना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है क्योंकि इससे वे हमारी बातचीत सुनने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे।
जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक लड़की का एक सपना होता है कि एक अच्छे घर में उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से हो
जी,
और वह वहां जीवन भर खुश रह सके।
बिल्कुल अपर्णा जी, आपने सही कहा है कि प्रत्येक युवा लड़की का एक सपना होता है कि वह शादी करके जाए तो उसे एक खुशहाल ससुराल मिले और वह वहां भविष्य के सपने पूरे कर सके, यानी जो सपने उसने अपने विवाह के पूर्व देखे हैं वो पूरे कर सके, पूरे
हो जाए। क्योंकि अपने भविष्य के सपने संजोकर ही तो एक युवा लड़की अपने विवाह की स्वीकृति देती है
जी।
उस भविष्य की जो उसके मन के समुद्र में लहरों की तरह हलचल मचा रहा होता है।
तो आज अपर्णा जी, अपनी युवा श्रोता साथियों के लिए हम ऐसे ही विषय ससुराल में युवा बहू का सामंजस्य पर चर्चा करेंगे।
देखिए माइकल जी, हमारे कुछ श्रोता ये भी सोच रहे होंगे कि आजकल तो एकल परिवार का जमाना है, आजकल संयुक्त परिवार रहे कहाँ हैं। तो ऐसे श्रोताओं की सूचना के लिए हम ये बताते चलें कि ऐसा तो होता नहीं है कि शादी करते से ही दूसरे दिन ही बेटा बहू अपना अलग आशियाना बसा लेते हैं।
बिल्कुल अपर्णा जी, शादी के बाद हर एक युवा दूल्हा दुल्हन का जोड़ा संयुक्त परिवार से अलग होने के समय तो अलग होता ही है। और अगर दूल्हा कहीं बाहर संयुक्त परिवार से दूर रहकर नौकरी भी कर रहा है तो भी शादी करने से ही दुल्हन को लेकर वो चला नहीं जाता।
जी हाँ, हफ्ता चार दिन तो वो अपने माता पिता के घर पर अपनी दुल्हन यानी कि उनकी बहू को लेकर उनके साथ समय तो बिताता ही है।
बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है शादी में जो दूल्हा है वो छुट्टियां तो लेता ही है, और कुछ उन छुट्टियों में से कुछ दिन वो अपने माता पिता या परिवार के साथ जरूर बिताता है।
इसलिए इन बातों के अलावा भी यदि बेटा बहू कुछ समय के बाद संयुक्त परिवार से अलग हो जाते हैं तो कभी कभार उनका अपने माता पिता के घर यानी कि बहू के ससुराल आना जाना लगा ही रहता है।
बिल्कुल अपर्णा जी, इसलिए निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि साथ रहकर भी और अलग रहकर भी, ससुराल में रहकर भी और ससुराल से दूर रहकर भी, एक युवा बहू अपने ससुराल और अपने सास ससुर तथा अन्य सदस्यों के संपर्क में लगातार बनी रहती है।
और ससुराल के संपर्क में लगातार बने रहने के कारण ही कभी कभार कुछ युवा बहुएं किसी न किसी कारण से अपने ससुराल में अपने आप को एक अपरिचित, एक अजनबी की तरह पाती हैं।
जी हाँ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से वे वहां अपने आप को घर जैसे माहौल में नहीं पाती हैं। ससुराल वाले युवा बहू से अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं और युवा बहू अपने कारणों से ससुराल पक्ष के साथ अपना सामंजस्य नहीं बैठा पाती हैं।
और माइकल जी, इस कश्मकश की स्थिति में ऐसे में एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि विवाह पश्चात कुछ युवतियां अपने ससुराल पक्ष से अपना सामंजस्य बैठा लेती हैं तो कुछ चाहकर भी अपने ससुराल पक्ष से उतना सामंजस्य नहीं बैठा पाती।
देखिए पन्ना जी, क्या होता है कि ससुराल पक्ष में नई युवा बहू को एक दो नहीं बल्कि दो से अधिक नए और एकदम अपरिचित लोगों का सामना कर उनसे संबंध कायम करना पड़ता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी लड़की अगर उसकी बातचीत के द्वारा शादी हो रही है, अरेंज मैरिज हो रही है, और जब वो नए घर में जाती तो उसे एकदम पता नहीं होता कि उसके वहां कितने परिवार में सदस्य हैं या उसे किनका सामना करना पड़ेगा,
सारी बातों से अनजान रहती है।
जी बिल्कुल,
ये सचमुच एक कठिन काम होता है माइकल जी, क्योंकि एकदम से अजनबी लोगों के साथ आप कुछ देर और कुछ दिन ये सोचकर बिता सकते हैं कि ये साथ कुछ ही देर का है या कुछ ही दिन का है, लेकिन
जब ऐसे साथ की बात जिंदगी भर के लिए हो अपर्णा जी, तो व्यक्ति की स्थिति बड़ी विकट हो जाती है।
बिल्कुल,
यदि ऐसे में प्रेम विवाह के कारण ससुराल पक्ष पूर्व परिचित है तो नई युवा बहू को सामंजस्य बैठाने में अधिक सरलता होती है।
जी हाँ, लेकिन
और अगर ना हो, पूर्व परिचित ना हो ससुराल पक्ष, तो फिर मेरे ख्याल से काफी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ता है।
बिल्कुल माइकल जी, इसके अलावा अपरिचित व्यक्तियों से एकदम सामंजस्य बैठा लेना इसलिए भी सहज नहीं होता है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक मानसिकता होती है, एक अलग सोच होती है,
और इन सब पर आधारित होती है अपर्णा जी उसकी अपनी आदतें और अपना व्यवहार।
बिल्कुल,
ये बात बहुत महत्व की है और ये बात दोनों ससुराल पक्ष और नई युवा बहू दोनों के बारे में कही जा सकती
बिल्कुल,
है।
बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अपरिचित होते हैं, दोनों की अपनी मानसिकता, अपनी सोच, अपनी आदतें और अपना व्यवहार होता है।
जी बिल्कुल,
इसलिए यूं भी कहा जा सकता है कि दोनों को एक दूसरे से सामंजस्य बैठाना थोड़ा कठिन होता होगा।
जी अपर्णा जी, इसलिए दोनों संयम बरतते हुए एक दूसरे से अपना सामंजस्य बिठाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं। देखिए, जैसे कि ससुराल पक्ष बहू से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है, बहू चूंकि बिल्कुल नहीं है, वो ससुराल पक्ष से अपना सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है, वो हर स्थिति में ये चाहती है कि मेरे घर परिवार, मेरे माता पिता का नाम वहां ये जानकर खराब ना हो कि बहू अपने ससुराल में सामंजस्य नहीं बैठा पा रही है, चाहे वो कुछ ही दिन के लिए सही लेकिन कोशिश पूरी करती है, फिर चाहे वो बाद में संयुक्त परिवार से अलग हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, लेकिन अपर्णा जी, यहाँ पर मैं एक खास तौर पर बात कहना चाहूंगा।
जी, कौन सी बात?
यही कि सबसे अधिक सामंजस्य तो नई युवा बहू को ही बैठाने के प्रयास करना पड़ता है।
सही कह रहे हैं आप।
बजाय और अपेक्षा ससुराल पक्ष, क्योंकि परिवार में आने वाली एकमात्र वही नई सदस्य होती है, क्योंकि बाकी तो सभी पुराने हैं वहाँ के और वो उनके ही घर है। तो उन्हें क्या पड़ी कि वो सामंजस्य बैठाएं, तो कहाँ किस तरह से क्या होता है।
और ये आप बिल्कुल वास्तविक बात कह रहे हैं कि अब देखिए ना, उसके ससुराल में सास ससुर नन देवर तो होते ही हैं, और यदि जेठ जेठानी भी हुए तो उसकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इसलिए सामंजस्य बैठाने की पहली बात तो नई बहू की तरफ से ही हुई।
बिल्कुल, और इसके साथ साथ सामंजस्य उसे सिर्फ घर के कामकाज में ही नहीं बैठाना पड़ता या वहां रहने का ही नहीं बैठाना पड़ता। सामंजस्य उसे अपने से बड़ों का, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, सास ससुर तो कह रहे हैं
जेठानी और
जेठ जेठानी की बात जो है, तो इन जैसे बड़े लोगों का उसे आदर सम्मान भी करना पड़ता है, तो उसे अपने व्यवहार का सामंजस्य भी बैठाना पड़ता है, चाहे वो देवर से बैठाना हो, ननंद से बैठाना हो, अब छोटों से, या फिर अपने बड़ों से सामंजस्य बैठाना हो, जैसे कि जेठ जेठानी से।
और माइकल जी, आपने ये एक बहुत खास बात की है कि नई युवा बहू को परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ अलग अलग व्यवहार तो करना ही पड़ता है।
जी।
अब मान लीजिए आपकी जैसे बहू सास ससुर के साथ जैसा व्यवहार करती है या उसे वो जैसा भी व्यवहार करेगी,
जी,
वैसा व्यवहार वो अपने देवर और नंद के साथ नहीं कर पाएगी।
बिल्कुल, क्योंकि अगर उसके देवर और ननंद उसके हम उम्र हुए तो उसका व्यवहार अलग होगा, और अगर उससे वे छोटे होंगे तो भी उसका व्यवहार अलग होगा।
जी माइकल जी, हम उम्र होने पर उसका व्यवहार उनके साथ दोस्त की तरह हो सकता है, और जेठ जेठानी के साथ उनके बड़े होने के बावजूद समानता का व्यवहार हो सकता है।
अच्छा अपर्णा जी, ये बताइए कि ससुराल में नई युवा बहू का मन कब और कैसे आहत हो जाता है या होता है?
देखिए माइकल जी, नई बहू हो या कोई भी व्यक्ति ही क्यों ना हो, सभी का मन अपने प्रति किसी भी गलत व्यवहार से, यानी किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए गलत व्यवहार से या किसी के द्वारा कही गई किसी गलत बात से आहत तो होता ही है।
और मेरे ख्याल से अपर्णा जी, मैं समझता हूँ जहां तक मन आहत होने की बात है नई बहू का, तो खास करके क्या होता है कि कई बार गलतफहमी बीच में आ जाती है कि अगर ससुराल पक्ष का कोई सदस्य बहू को सही बात भी बता रहा है उसकी गलती सुधारने के लिए, तो ये भी हो सकता है कि नई बहू को ये लगता हो कि चूंकि मैं नई हूं और मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, या बेमतलब मुझे समझाने और कुछ बताने की शुरुआत है या ये काम किया जा रहा है, जिसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं होती, इसलिए उसको वो उसका मन आहत हो जाता है, उसको लगता है कि ये मेरे साथ व्यर्थ में किया जा रहा है।
और माइकल जी, बेमतलब की टोका टाकी से भी नई युवा बहू का मन आहत हो सकता है कि भाई ये तुमने क्या कह दिया, या तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या कि कम से कम तुमको ये करने से पहले कुछ पूछ लेना चाहिए था, और वगैरह वगैरह तमाम इस तरीके की बातें।
आपने बहुत अच्छी बात कही है अपर्णा जी, अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि बहू नई होती है तो परिवार का प्रत्येक सदस्य उसे अपने घर की क्रिया समझाना चाहता है, जैसे कि इसके पहले मैं आपको बता रहा था कि प्रत्येक सदस्य चाहता है कि जैसे अगर वो मुंह धोने के लिए किसी पात्र या बर्तन का उपयोग करते हैं और उसको यथास्थान किसी विशेष जगह पर रखते हैं, तो वो नई बहू से भी ये चाहेंगे, या घर आए किसी भी नए सदस्य
से, वो भी उसी जगह पर रखे या वैसे ही करे,
वो यही चाहते हैं किसी भी नए सदस्य, चाहे बहू हो या कोई और भी हो, कि वो उसको उसी स्थान पर रखे, उनके घर का जो एक व्यवस्था बनी हुई है वो बिगड़े नहीं या बिगड़ने ना पाए। और कभी कभी क्या होता है कि किसी सदस्य के अलग तरह के मूड के कारण उसको बोलने का ढंग थोड़ा कड़वा होता है,
बिल्कुल,
जैसे कोई किसी परेशानी में, किसी टेंशन में कोई सदस्य है और उसने किसी और तरीके से उसी बात को बोल दिया, जिस बात को अच्छे मूड में अगर बोलता या अच्छे तरीके से बोलता था, शायद बहू को बुरा ना लगता या बहू का मन आहत ना होता, लेकिन उसके मन स्थिति ठीक ना होने के कारण बहू उस चीज को गलत रूप में भी ले लेती है।
और माइकल जी, कई सदस्य तो नम्रता और संयम से काम लेकर समझते हैं
और समझाते हैं,
जी समझाते हैं, लेकिन कुछ सदस्य हम नहीं सुधरेंगे कि तर्ज पर अपने कड़वे अंदाज में ही अपनी बात कहते रहते हैं।
जी, आपने ये भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि कई बार ससुराल पक्ष के सदस्यों को लगता है कि हम तो जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे और सामने वाले को भी वैसे ही रहने का वो देंगे, और विशेष करके अपने से थोड़ा सा कमतर वो उसको मान के चलते हैं कि ये बाहर से आया हुआ सदस्य है, थोड़ा सा खास करके जो ननंद होती हैं, मैं किसी व्यक्ति रिश्ते पे व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि समाज में देखने में इस तर्ज पे मैं बात कह रहा हूँ, वैसे हर ननंद उस तरह की नहीं होती है, तो कभी कभी बहू नई बहू जो होती है वो उसको गलत अर्थ में भी ले लेती है।
और माइकल जी, ऐसे व्यवहार के पीछे शायद उनका कारण ये होता होगा कि इस घर में आई नई बहू को जैसा हम चाहेंगे वैसा ही रहना होगा।
जी बिल्कुल।
या ये सोच सकते हैं कि ढील देने से या नम्रतापूर्वक कहने से कहीं नई बहू सिर न चढ़ जाए। मतलब आम तौर पर ये चीजें देखी गई हैं, सुना गया है कि बड़े लोग इस तरीके से सोचते हैं।
जी हाँ, और ये जो बात आपने कही है, मेरे ख्याल से अधिकतर ससुराल पक्ष का भाव यही रहता है, चाहे वो और लोगों के सामने इस चीज को दिखाए नहीं या इस चीज का दिखावा ना करें, लेकिन अपने घर की चार दीवारी के भीतर वो यही सोचते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसे लोगों का ये मानना और समझना होता है कि हम अपने आप को क्यों बदलें।
जी।
बदल कर रहना तो अब इस बहू को होगा, चाहे वो अपने मायके में कैसे भी रहती हो।
जी अपर्णा जी, अक्सर ये भी देखा गया है कि अपने देवर या ननंद के किसी भी प्रकार के प्रतिकूल व्यवहार से भी बहू का मन ससुराल पक्ष से खट्टा हो जाता है, क्योंकि ससुराल में भी वो अपने देवर को अपना भाई और ननंद को अपनी बहन ही समझती।
बिल्कुल सही। इसलिए तो जब उसका देवर या नंद उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसे फौरन अपने भाई बहन की याद आ जाती है, और जब भाई बहन याद आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसे अपने घर की याद भी आती ही होगी।
जी हाँ, और फिर उसके मन में अपने ससुराल और उसके सदस्यों के लिए गांठ बनने लगती है।
जी हाँ।
और यही नहीं, उसका मन अपने ससुराल से उखड़ने भी लगता है।
बिल्कुल।
आगे चलकर यदि ये समस्या विशाल रूप धारण कर लेती है तो फिर उसके गर्भ से ही अलगाव का जन्म होता है।
बिल्कुल सही कहा माइकल जी आपने। ये भी देखा गया है कि युवा बहू के काम काज में या व्यवहार में भी अक्सर कमी या गलती निकाली जाती है, और उसकी कमी या गलती को भी कभी कभी अपमानजनक तरीके से बताया जाता है। ये बात भी बहू को बुरी लग सकती है।
बिल्कुल अपर्णा जी बिल्कुल। इस तरह की आलोचना की वजह से भी उसके मन में आलोचना करने वाले के लिए एक गांठ बन जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि आगे भविष्य में भी उन दोनों के मन में और व्यवहार में एक दूसरे के लिए प्रतिकूल व्यवहार देखने को ही मिलता है।
कटुपन आ जाता है, ये भी कह सकते हैं। और उनके इस तरह के व्यवहार के कारण ही घर की शांति बेवजह भंग होती रहती है। जबकि होना ये चाहिए माइकल जी कि नए माहौल और नई जगह पर हर एक चीज से अनजान नई बहू को सब कुछ प्यार और धीरज सबर से समझाना चाहिए हमें।
बिल्कुल, इस तरह समझाने से वो तुरंत मान जाएगी और दोनों में से किसी के भी मन में अकारण कोई गांठ भी नहीं बनेगी।
जी।
और इससे सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि बहू अपनी गलती मानकर उसे अगली बार दोहराएगी नहीं, बल्कि उसे सुधार लेगी।
आप ये भी कह रहे हैं कि बहू में भी उस प्रकार का
बिल्कुल
सोच और उस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए कि वो अपनी गलती मान ले और उसे बदले।
होना चाहिए, और ये सोच और व्यवहार पनपना भी चाहिए।
जी। और माइकल जी, साथ ही साथ नई बहू को भी ससुराल में सामंजस्य बैठाने के लिए उस परिवार को अपना परिवार मानना होगा, अपने आप को उस परिवार का ही एक सदस्य बनाना और मानना होगा।
और अपर्णा जी, अपनी कमी और गलतियों को सहज रूप में लेना होगा।
जी।
यदि किसी और की गलती के अवसर और कटुता बढ़ने के अवसर आते भी हैं तो उन्हें गंभीरता से नहीं बल्कि हल्के फुल्के ढंग से लेना चाहिए।
ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कि सहजता और हल्के फुल्के ढंग से लेना होगा। प्रत्येक बात में अपने मायके और ससुराल की तुलना करना ठीक नहीं होता है माइकल जी, क्योंकि प्रत्येक परिवार की सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति हमेशा ही एक दूसरे से अलग होती है, इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए।
आशा है हमारी युवा श्रोता साथी जो नई बहू बन चुकी है या फिर नई बहू बनने की तैयारी में।
साथियों, अभी आपने सुना आज का हमारा विशेष कार्यक्रम युवा और विकास। साथियों, इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस सुन रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का पुनः शुक्रिया। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं एक सुमधुर गीत।
चलो, धन्यवाद के फूल चलो। परम पिता प्रभु येसु मेरे पावन आत्मा मीत मेरे परम पिता प्रभु येसु मेरे पावन आत्मा मीत मेरे तेरी ही पूजा तेरी ही वंदना जीवन मेरा तेरी आराधना तेरी ही।
साथियों अभी आपने सुना आज का एक और सुमधुर गीत। दोस्तों इस समय आप रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सेवा सुन रहे हैं। आप हमें ऑनलाइन hindi.rvasia.org पर भी सुन सकते हैं। साथियों हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलिए। हमारा फेसबुक आईडी है RVA हिंदी। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है RVA हिंदी। आप ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @RVA हिंदी। साथियों हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है RVA हिंदी। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड कर हमारे सभी कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारे ऐप पर दैनिक खबरें, विभिन्न लेख, रचनाएं, कविताएं एवं हमारे विभिन्न प्रकार के आर्टिकल पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कोई सवाल, सुझाव, लेख या रचनाएं हैं जो आप हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7974314201। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है satyaswar0@gmail.com। आप पत्र के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है RVA ऑफिस 10, सत प्रकाशन संचार केंद्र, खंडवा रोड, भवरकुआ पुलिस स्टेशन के पास, इंदौर, मध्य प्रदेश। हमारा पिन कोड है 452001। दोस्तों अगर आप यह कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो RVA मोबाइल ऐप में जाकर आर्काइव में यह सुन सकते हैं। साथियों हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। साथियों अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हमसे जुड़े रहें और सुनते रहिए RVA हिंदी। मेरा यानी कि प्रियंका डामोर का आप सभी का हमारा प्रोग्राम सुनने के लिए धन्यवाद।